डवला पुस्तक पहरवी लेक्चर नंबर 18 ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओ सुजात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं भुवने उमंगलं वो भवियजनाजिनवरस्सकमकमलजुवं जसकुलिसकलससत्थिय सशंख शंख कुशादिलक्षणवरियम्। यह श्री वीरसेन आचार्य की जेधोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा यति सब आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में ये जो संयमासंयम अर्थाधिकार है उसकी यहाँ बात चल रही है। पुरुष संख्या है 138। देखो, किसी भी वस्तु का किसी भी विषय का निर्णय करना है तो वहाँ ये 8 अनियोग द्वार कम से कम वहाँ बताए हैं। कौन से? सत प्ररूपणा, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भागा भाग और अल्पबोध। उसकी चर्चा करते हुए हमने काल और सॉरी क्षेत्र तक की बात की थी, क्षेत्र और स्पर्शन। अब काल की अपेक्षा यहाँ हम विशेषार्थ में देख रहे थे 138 पृष्ठ पर। तो काल कहते, अभी संयमा संयम के काल की बात चल रही है। 138 पेज ऊपर से 3, 3, 6, 3, 9, 10, 10वीं लाइन में काल लिखा है, बीच वहां से पढ़ेंगे। एक जीव और नाना जीवों की अपेक्षा काल दो प्रकार का है। एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा क्या कहेंगे, काल कितना है? सर्वदा है, क्योंकि हमेशा पांचवें गुणस्थान में कोई ना कोई जीव पाया जाए। अब एक जीव की अपेक्षा बात करें तो एक जीव की अपेक्षा ओघ से काल का विचार करने पर जघन्य काल अंतर्मूल प्रमाण है। यानी कोई जीव नीचे के गुणस्थान से पांचवे में आया या ऊपर से आया और फिर अन्य गुणस्थान में चला गया तो पांचवे का जघन्य काल अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त पृथक्त्व कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। यानी कुछ अंतर्मूर्त कम करना, हमने ये देखा था सम्मूर्छन तिर्यंतों की अपेक्षा ये बात हो सकती है। नहीं तो गर्भजों में तो गर्भ का काल माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके पश्चात भी कुछ काल माइनस, मनुष्यों में तो 8 वर्ष कम करने पड़े। इसलिए हम अंतर्मूर्त पृथक्त्व कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण। अब आदेश यानी गतियों की बात करेंगे। तिर्यंश गति में एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल इसी प्रकार जानना चाहिए। इसी प्रकार यानी जो पूर्वकोटि में अंतर्मूर्त कम बताया वो तिर्यंश की अपेक्षा थी, तो आदेश से तिर्यंश गति में तो घटित होगा, परंतु मनुष्य की बात अभी बताएंगे। मात्र उत्कृष्ट काल मनुष्य गति में पड़ेंगे। मनुष्य गति में एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूल प्रमाण ही है। मात्र उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर्मूल कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। 8 वर्ष और एक अंतर्मूल। ओग से और आदेश से दोनों गतियों में नाना जीवों की अपेक्षा काल सर्वदा है, यानी हमेशा ही पांचवें गुणस्थान वाले जीव इन दोनों ही गतियों में पाए जाएंगे। अब अंतर देखेंगे हम। अंतर का अर्थ क्या देखा था तेजल, याद है? हाँ, गैप यानी पहले भी पांचवा गुणस्थान चाहिए, फिर अन्यत्र गया, फिर वापस आया। ओग से एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर में, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। वो उसे इसलिए कहा है
गति,
हाँ, क्योंकि वो कहीं वह किसी भी गति में क्यों न घूमे, इतने काल के बाद दोबारा जब समय पर सीमा से हम प्राप्त करेगा तो उसका अंतर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आदेश से दोनों गतियों की अपेक्षा यथासंभव अंतरकाल जानना चाहिए। यथासंभव अभी यहाँ क्या करना है, सीरियंस में गतियों की अपेक्षा अभी अश्विन भाई आप कहेंगे उत्कृष्ट अंतर कितना होगा।
अर्धपुद्गल
हो सकता है मनुष्यों में,
नहीं।
देखो मनुष्य का अर्थ क्या है, वो मनुष्य गति में ही रहना चाहिए, उसकी गति नहीं पलटना चाहिए। तो लगातार मनुष्य भाव कितने हो सकते हैं, देखो स्त्री के पुरुष के,
चौबीस
के पुरुष के नपुंसक थे,
एक अपर्याप्त
अपर्याप्त हो करके फिर
वापस चौबीस,
हाँ। तो कोटि यानी हर एक भाव हम मान लेते मैक्सिमम बड़ा मिला, एक एक पूर्व कोटि का एक एक भाव, ऐसे स्त्री के आठ, नपुंसक के आठ, पुरुष के आठ, कितने हुए 24। एक अंतर्मूल के लिए मनुष्य लब्धि अपर्याप्त हुआ और फिर आठ आठ आठ, तो इसमें संयमा संयम की अपेक्षा बात करनी है तो वो तीन पल्ले वाला तो नहीं ले
नहीं
सकते हम, वहाँ तो चौथा ही गुणस्थान है,
तो
इसलिए सभी पूर्व कोटि का ही शुरुआत के एक भाव में उसने पूर्व यानी पांचवें गुणस्थान प्राप्त किया। यहाँ ये बात समझना कि वहाँ आयु का बंध उसने नहीं किया था और फिर बाद में उसने मिथ्यात्व में गया, आयु का बंध किया, क्योंकि लगातार मनुष्य रहने के लिए समय दृष्टि हो जाए तो या तो भूमि का मनुष्य हो जाए आयु बंधी हो तो, या बाद में आयु बंधेगा तो देव में चला जाएगा। पहले मनुष्य आयु बंधी होगी तो उसको पांचवा गुणस्थान ही
नहीं होगा,
ये बात है। तो ये जितने जो लगातार भव है, शुरुआत में एक बार उसने किया और लास्ट भव में किया, वो मनुष्य गति की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। पूर्व कोटि पृथक्त्व, कई पूर्व कोटि, इसलिए कहा यथासंभव बोल सकते हैं ना, पृथक्त्व में आ गई वो नाना जीवन की अपेक्षा। वो ये बात बहुत बार अंतर की हो चुकी है ना, इसलिए ये विशेष अर्थ में बताना था, तो ये बहुत बार ये अंतर की बात होती है इसलिए यहाँ यथासंभव लिख दिया। नाना जीवों की अपेक्षा ओग से और आदेश से दोनों गतियों में अंतरकाल नहीं है। अब भागा भाग बताएंगे। ओग से संहिता संयत एक पद है, अच्छा इसलिए भागा भाग नहीं है, वो एक ही है इसलिए उसमें भागा भाग नहीं कहते, उसके स्वस्थान की अपेक्षा भागा भाग नहीं, परंतु दूसरे अन्य गुणस्थानों की अपेक्षा बात करेंगे या अन्य जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो परस्थान की अपेक्षा संहिता संयत जीव सब संसारी जीवों के अनंत वे भाग प्रमाण। आदेश से तीर्यंश गति और अमनस्य गति में इसी प्रकार जान लेना चाहिए। आदेश से क्या, हाँ देखो ऐसा अर्थ है, भागा भाग का अर्थ है कंपेरिटिव, कितना परसेंट है, तो संयमा संयम में ही संयमा संयम में जीव कितने परसेंट है, तो ऐसा हम भागा भाग नहीं कहेंगे। यदि ऐसा कहेंगे सम्यक दर्शन अपने कुछ प्ररूप ना चल रही क्षायिक सम्यक का, तो सम्यक दृष्टियों में क्षायिक सम्यक दृष्टि कितने, ऑप्शन कितने, वेदक कितने, उसमें तो हम भागा भाग कहेंगे। तो यहाँ संयमा संयम में कोई डिफरेंस ना, यदि संयम कहेंगे तो संयम में कोई सामायिक चलो को स्थापना वाले, कोई परिहार विशुद्धि वाले, कोई यथाख्यात है, कोई सूक्ष्म सांत्र है, तो उसमें भागा भाग कह सकते। अभी वो तो आपने उसमें और भेद करके, और यहाँ संहिता संयत का भागा भाग चल रहा है, संहिता संयत के भेदों का नहीं चल रहा, संहिता संयत का भागा भाग चल रहा है। इसलिए परस्थान में तो भागा भाग बता दिया, सभी संसारी जीव अनंत है, उसकी अपेक्षा पांचवी गुणस्थान वाले कितने, तो अनंत वे भाग समान। आदेश से तीर्यंश गति और मनुष्य गति में इसी प्रकार जान लेना चाहिए। तीर्यंश गति में तो अनंत वे भाग कहेंगे, परंतु मनुष्य गति में मनुष्य गति की अपेक्षा
मनुष्य गति के लिए
परंतु ओग लगाना पड़ता, नहीं तो असंख्या पे भाग कहना पड़ता ना। मनुष्य गति के जीव कितने हैं?
संख्या पे भाग, मनुष्य गति में असंख्या
असंख्या। मनुष्य इतना ही कहेंगे तो सब आ गए, मात्र मनुष्य कहेंगे। मनुष्य गति में संहिता संयत जीव कितने भाग प्रमाण है? मनुष्य गति में सब तो सब ही मनुष्य
गति,
ये असंख्या तो भाग कहेंगे हम। भागा भाग में कितने हैं वो नहीं कहना है, कितने भाग प्रमाण वो कितने हैं कहना, वो प्रमाण परिमाण अनुयोग द्वारा वो यहाँ नहीं लिया उन्होंने। अल्प बहुत वो ओग से संहिता संयत एक पद है, इसलिए स्वस्थान की अपेक्षा अल्प बहुत वो नहीं है। आदेश से मनुष्य गति में संहिता संयत जीव सबसे थोड़े हैं। अभी आदेश में कैसे लगाना, तीरेंस और मनुष्यों में तुलना कंपेरिजन कि मनुष्य कम है संख्यात है और तीरेंस असंख्या पांचवें गुणस्थान वाले। तो कहते हैं मनुष्य गति में संहिता संयत जीव सबसे थोड़े हैं, उनसे तीरेंस गति में संहिता संयत जीव असंख्यात गुणे हैं। ये विशेषार्थ में उन्होंने एक लगा के बता दिया। इस प्रकार इन आठ अनियोग द्वारों का व्याख्यान समाप्त होने पर फिर भी संयमा संयम लब्धि विषयक, ये लब्धि करना भ दिख रहा है, दूसरी प्ररूपणा को बतलावेंगे। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। देखो अलग अलग पद्धति से बताए हैं, कल भी उन्होंने ऐसा ही बताया कि पहले तो उसी कितने कहा क्या क्या उपकरण होते हैं वो बताया, फिर उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं उसकी बात बताई, फिर कहते हैं ये आठ अनुयोग द्वार जानना चाहिए। अब आठ अनुयोग द्वारों की बात करते हैं तो फिर कहते हैं और भी अन्य पद्धति से इसका कथन करेंगे, और भी विशेष बातें बताएंगे आप ऊपर सूत्र में पढ़ेंगे। एदेशु अनियोग द्वारेषु समस्तेषु तीव मंदाय सामित्तम अप्पा बहुवं च पायोगम, इन अनियोग द्वारों के समाप्त होने पर तीव्र मंदता विषयक स्वामित्व और अल्पभूत्व करना चाहिए। यानी यहाँ विशुद्धि की बात करेंगे, अल्पभूत्व ऊपर था पर उस अल्पभूत्व में उन्होंने संख्या ली थी जीवों की, उसके पहले जो अल्पभूत्व था वो अलग अलग कालों का अल्पभूत्व था, है ना। अनुभाग कांड का उत्कीर्ण काल देखा, फिर स्थिति कांड का उत्कीर्ण काल देखा, फिर वो अलग अलग अंतर्मूर्त के प्रमाण देखे, फिर कांड का उत्कीर्ण का आयाम देखा, आबाधा देखी वगैरह वगैरह। अब यहाँ शंकाकार पूछता है नीचे लास्ट लाइन, आठ अनियोग द्वारों के आलंबन से संहिता संयतों की प्ररूपणा समाप्त होने पर यह अन्य प्ररूपणा किस लिए आरंभ की जाती है? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट भेद से दो प्रकार की संयमा संयम लब्धि के स्वामित्व और अल्पभूत्व द्वारा, अश्व में ये दो प्रकार की संयमा संयम लब्धि कौन सी है? हाँ, एकांत अनुवृद्धि। आप क्या कह रहे?
नहीं, मैंने ऐसा,
आपने करण बताया, करण
में
संयमा संयम
नहीं है।
हाँ, मुझे लगा वो आप आधा प्रवृत्त का संयमा संयम देख रहे हैं, एकांत अनुवृद्धि और वो लगता है मुझे, अभी देखेंगे।
नहीं वो तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो आगे के गुणस्थान वाला होगा,
करण तो होगे ही नहीं क्योंकि वो नीचे के गुणस्थान वाले। तो दो प्रकार की संयमा संयम लब्धि के स्वामित्व और अल्पभूत्व द्वारा तीव्र मंदता की प्ररूपणा करने के लिए इस प्ररूपणा का अवतार हुआ, उनमें से जघन्य और उत्कृष्ट संयमा संयम लब्धियों का स्वामी कौन है, इस प्रकार संबंध विशेष का निश्चय करना स्वामित्व है। और इन्हीं की तीव्र मंदता के अल्पभूत्व की परीक्षा का नाम अल्पभूत्व। शंका, यहाँ पर स्वामित्व और अल्पभूत्व के योनिभूत प्ररूपणा अनुयोग द्वार का कथन क्यों नहीं किया? क्योंकि योनिभूत के ने वो जिसमें से उत्पन्न होती है, नहीं यही कहते कि ये प्ररूपणा बताए बिना स्वामित्व की और अल्पभूतो की बात कहाँ से आई? तो यही उनका प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि वह अनुक्त सिद्ध है। जब स्वामित्व बता रहे हैं तो सहमा सहम है ये होगी तभी तो उसका स्वामित्व बताएंगे, तो उसमें अनुक्त सिद्ध ने बिना बताए वो उसमें गर्भित है, इसलिए तो ये प्ररूपणा क्या होती है, बर है ये कह देना, इसको प्ररूपणा कहेंगे। उसी को कल क्या नाम दिया था, संत परूवण सत प्ररूपण में है। आगे और भी एक शब्द आता है उसके लिए, समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तना नाम का भी एक नाम, वो भी नाम आता है उसके लिए, हाँ प्रसूति समुत्कीर्तन। तो यहाँ कहते हैं, हाँ जघन्य संयमा संयम लब्धि है, बस है बता दिया ये प्ररूपणा हुई, और उत्कृष्ट संयमा संयम लब्धि है, इस प्रकार उन ये लिखा यहाँ, उनका समुत्कीर्तन कर, यानी है ऐसा बताना, ये है समुत्कीर्तन। तत्पश्चात स्वामित्व को अधिकृत करते, क्योंकि शंकाकार ने पूछा था निरूपण करना यानी कथन करना, प्ररूपणा यानी उसकी एक्चुअली वो है ऐसा अस्तित्व बताना, उसको प्ररूपणा कहते हैं। कोई भी विषय लेते हैं तो पहले में पहले प्ररूपणा कि वे है बता दिया, फिर उसके बारे में उसका स्वामित्व काल अंतर जो कुछ बताना है वो आगे चल के बताना, इसको कहेंगे प्ररूपणा। हाँ हाँ, वो प्ररूपणा भी निरूपण ही है, प्ररूपणा करना भी निरूपण है। निरूपण अलग लिया, तो ऊपर कहते स्वामित्वम, स्वामित्व का अधिकार है, यह सूत्र सुगम है, यह अधिकार का नाम बता दिया कि अभी स्वामित्व के बारे में बताएंगे। तो उसमें प्राप्ति में उसकी विशुद्धि होगी उसके योग। तो यहाँ अभी पूछ रहे उत्कृष्ट या लब्धि तत्व, पहले तो बताया जघन्य है उत्कृष्ट है, अब प्रश्न पूछकर उसका स्वामी को बताएंगे। उत्कृष्ट संयमा संयम लब्धि किसके होती है, यह भी सूत्र सुगम है, क्योंकि पृच्छा मात्र में इसका व्यापार है, पृच्छा यानी क्वेश्चन पूछना, हाँ प्रश्न चिन्ह चाहिए, है ना। अब उसका उत्तर बता रहे, संजदा संजदस्य सौ विशुद्धस्य से काले संयमक गाहयस्य, अनंतर समय में संयम को ग्रहण करने वाले सर्व विशुद्ध संयता संयत के होती है। ये उत्कृष्ट विशुद्धि किसके होगी, तो जो पांचवें गुणस्थान से सातवें में जाने वाला, क्योंकि जब संयम प्रकट होता है तो पहले में पहले सातवां होता है, बाद में सातवें में से छठे में चला जाता है, तो पांचवें से जो सातवें में आने वाला जीव है, पांचवें का अंतिम समय, वो पांचवे के योग्य उत्कृष्ट विशुद्धि, क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में कैसे जाएगा, क्योंकि विशुद्धि बढ़ गई इसलिए वहाँ जाएगा।
यहाँ पे भी पांचवे से सातवे में अपूर्वकरण में जो अंतिम समय होगा वही लेना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, पांचवे का अंतिम समय, छठे में कोई जाता है, ऊपर चढ़ते समय छठा आता ही नहीं है, छठा कब आता है, सातवें में से नीचे उतर कर आता है।
जाना
फिर भी वहाँ पांचवे की योग विशुद्धि थी और वो अभी सातवें में जाना है, इसकी विशुद्धि ज्यादा है। पांचवे के योग विशुद्धियों की चर्चा चल रही है, तो पांचवे में जीव अन्य अन्य जीव पांचवे गुणस्थान में, उनमें सबसे विशुद्धि किसके होगी जो पांचवे से सातवें में जा रहा है? ये कंपेयर सभी जीवों की बात नहीं चल रही, अभी मात्र पांचवे की बात चल रही। हाँ देखो, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है, 140 पृष्ठ पर आए हम। जो संयता संयत के ऊपर बिंदी रहेगी, संयता संयत संयत हुआ है ना, संयत करना, सर्व विशुद्ध होकर यानी सबसे अधिक विशुद्धि इसके संयम के अभिमुख हुआ है। अभी संयम प्राप्त नहीं किया तो फिर उसको संयता संयत नहीं कहेंगे, है तो संयता संयत, अभी नेक्स्ट समय में संयम ही होने वाला है, अंतिम समयवर्ती उस संयता संयत के उत्कृष्ट संयम संयमा संयम लब्धि होती है। इस प्रकार स्वामित्व विषयक संबंध है। शंका, इस संयमा संयम लब्धि को उत्कृष्टपना कैसे है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होने वाले संयम के अभिमुख हुए जीव के द्विचरम समय में उदीर्ण हुए कषायन संबंधी अनुभाग स्पर्धकों से, इसका विचार करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, अनंत गुणहीन अंतिम समय संबंधी उदीर्ण हुए स्पर्धकों से उत्पन्न हुई अंतिम विशुद्धि के सर्वोत्कृष्ट पने के प्रति विरोध का अभाव है। यहाँ ये बात चल रही है कि उसकी विशुद्धि मैक्सिमम क्यों है अंतिम समय में, जैसे पांचवे से सातवें में जाने वाला है तो वहाँ भी दो करण तो होंगे, वेदक समय दृष्टि है, पांचवे से सातवें में जा रहा है, जिसे हमने देखा था पांचवे में आने वाले के दो करण से हुआ था और वहाँ भी एक अंतर्मूर्त में तो विशुद्ध हुआ, फिर अजब प्रवृत्त में भी विशुद्धि बढ़ती गई और अपूर्व करण में भी अनंत गुणी बढ़ती गई, अंतिम समय में मैक्सिमम विशुद्धि होगी पूर्व गुणस्थान में। ऐसे यहाँ पर भी संयमा संयम से संयम प्राप्त करने वाले के दो करण होंगे तो उसके अंतिम समय में उसकी विशुद्धि मैक्सिमम होगी, अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना बढ़ रही है। अब कहते हैं ये तो बढ़ती आपने कह दिया, पर उसका कारण क्या है? तो हर समय में विशुद्धि बढ़ती है तो जो ऑलरेडी सत्ता में जो कर्म है तो उसका अनुभाग घटकर उदय में आए। किस संबंधी बात? अभी कषायन संबंधी लेना, कषायन संबंधी अनुभाग अत्यंत घटकर उदय में आ रहा है, यानी उसके स्पर्धकों में हम अनुभाग गिनते हैं, तो नीचे हम मिनिमम अनुभाग वाले दिखाते हैं, ऊपर मैक्सिमम अनुभाग वाले। तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, द्विचरम समय में कंपेरिजन लास्ट समय और सेकंड लास्ट इसमें हो रही है, तो द्विचरम समय में जितने अनुभाग का उदय था उदीर्ण है ने घटकर उदय में आना, उसको यहाँ उदीर्ण लिया। हर समय अनुभाग घटकर उदय रूप हो रहा है उसको ही यहाँ उदीर्ण कह दिया, उदय रूप हो रही है उसकी, तो प्रति समय वो अनुभाग अनंत गुना घटकर उदय में आ रहा है, तो द्विचरम में जितना उदय था उदीर्ण होकर हम कहेंगे, उससे अंतिम समय में और अनंत गुणाहीन होकर उदय में आया। तो यही लिखा है, द्विचरम समय में उदीर्ण हुए कषायों संबंधी अनुभाग स्पर्धकों से, अपनी भाषा में अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेदों से अनंत गुणहीन, वो अनंत गुणा घटकर अंतिम समय संबंधी उदीर्ण हुए स्पर्धकों से उत्पन्न हुई अंतिम विशुद्धि, यानी यहाँ कर्मों के उदय से उत्पन्न हुई विशुद्धि, ऐसा कहा, ये निमित्त का कथन होता है। यहाँ जीव के हर समय विशुद्धि बढ़ रही है तो सत्ता में जो कर्म है उसका अनुभव और घटकर उदय में आता है, और घटकर उदय में आता है, और घटकर उदय में आता है, सर्वथा कर्मों के कारण ही इसकी ऐसी बनी रहेगी, तो जैसे बांध कर जैसे जिस समय जैसा उदय हो वैसा राग करना पड़ेगा, परंतु इसकी अपनी विशुद्धि ऐसे बढ़ रही है कि उदय में आते आते अनंत गुणाहीन होकर अनुभव उदय में आए प्रतिशत, तो उसके निमित्त से फिर वहाँ होने वाले विशुद्धि और ज्यादा हो गई, तो उसके कारण वो सत्ता वाला अनुभव और घट रहा है। ये हर समय चलता आया है। अब कहते किसी जीव के सर्वोत्कृष्ट होगी, हर एक जीव की नहीं, उत्कृष्ट कहाँ हो सकती है उसकी बात है, उसका स्वामी
तो
कौन है।
एक जीव की अपेक्षा देखिए, जो तो लास्ट से अंतर्मुख है वहाँ पे तो अनुभव समानता होगी कि प्रति समय एक जीव की अपेक्षा विचारों और चरम समय में
कैसे नहीं। अभी क्या पता है
नहीं, पर आप अनुभव
विशुद्धि अनंत गुणा हो रही है
नहीं, अनुभव कांडक होने के लिए भी हमने अंतर्मुख देखा था, तो यहाँ पे अनुभव कांडक एक पूरा नहीं होता है तभी तक तो समान होगी।
अनुभाग कांडक ऊपर ऊपर होते हैं उदयावली, ये उदय समय में भी हीन होकर हो रहा है, पहले उदय न होकर की बात चली। अनुभाग का घटना तो हर निषेक में हो रहा है
हाँ।
वो बात सही है, परंतु यहाँ उदय न होने वाले उसकी बात चल रही है, उदय किस रूप में हो रहा है, हर समय अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है
हाँ।
तो उदय में आते आते भी घट रहा है ना वहाँ का, उसकी बात है, उदय में आते आते घट कर उदय में आ रहा है। अनुभाग कांडकों में एक झटके से इतने स्पर्धकों का नाश हो जाता है और वो नीचे के स्पर्धक रूप हो जाते हैं
अच्छा,
परंतु नीचे के स्पर्धक हो जाते हैं, मान लेते इतने स्पर्धक है, इतने का नाश केवल नीचे के स्पर्धक रूप से रहे, पर ये इतनी रेंज है इसमें से उदय किस रूप से होगा, पहले इस समय इस रूप से उदय हो रहा था तभी इस रूप से होगा, जघन्य की इस तरफ चले गया तो जघन्य होकर उसका उदय हो रहा। अब पूछते हैं जघन्य लब्धि कस्य, जघन्य संयमा से हम लब्धि किसके होती है। अब ये आसान है ना, पहले तो हमने संयम के अभिमुख लिया, अब उसको मिथ्या समय भेजना, तो जगन्य में जगन्य विशुद्धि कहें, यह सूत्र सुगम है। तब पावग संकलितस्थ से काले मिथ्यत्तम गाही दिस्ती, जो अनंतर समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होगा, हुआ ऐसा नहीं कहा होगा, यानी अभी वो सेवा स्वयं है, ऐसे तत्प्रायोज्य संकलेश परिणाम वाले संयता संयत के होती है। तत्प्रायोज्य शब्द लिख दिया क्योंकि वहाँ भी नीचे गिरने वाले के हर एक की विशुद्धि उतनी ज्यादा संकलेश वाली होगी ये बात नहीं हो सकती। कल कोई शब्द आया था ना, क्या ना? अलग कुछ नाम गुंज ऐसा कुछ
हाँ।
क्या अगुंशा
आगुंजा
131 पेज पर आए आगुंजा, यानी संकलेश ज्यादा होता है ना उसको आगुंजा कहा था 131 पेज पर।
आप जानते हैं कि आगुंजा
नीचे से दूसरा ये जो पैराग्राफ, कोई जीव आगुंजावश ऐसा संकलेश की बहुलता से प्रेरित हो सहमा सहम से च्युत होता है, ये आगुंजा शब्द आया था, थोड़ा अलग से हटकर है ना, इसलिए भूल गए हैं क्या था उसको।
पहली बार सुना आपने?
हाँ हाँ हाँ, ये आगुंजा शब्द पहली बार। आगुंजम आगुंजा, तो यहाँ कहते हैं अनंतर समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होगा। तत्प्रायोगिक संकलेशन एक अलग अलग संकलेश वाले जीव है जो अभी मिथ्यात्व में जाने वाले, उसमें से जो मैक्सिमम संकलेश वाला होगा उसको लेना। देखो जो संयता संयत जीव कषायों के तीव्र अनुभाग के उदय से संकलिष्ट होकर, ये हमेशा निमित्त का कथन करते हैं तो लोगों की ऐसी भ्रमणा होती है, देखो ये बिचारा कर्मों के कारण इसको नीचे आना पड़ा कि नहीं पड़ा, क्योंकि अनंतर समय में मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा, इस प्रकार अवस्थित है उस अंतिम समयवर्ती संयता संयत के जघन्य संयमा संयम लब्धि होती है। क्योंकि कषायों के तीव्र अनुभाग के उदय से उत्पन्न हुए संकलेश से ओतप्रोत ओतप्रोत समझते हैं भर गया एकदम पूरा पूरा लबालब भरा हुआ लबालब उस लब्धि के सबसे जघन्य पने के प्रति विरोध नहीं पाया जाता। यानी कषायों का तीव्र अनुभाग का उदय चल रहा है और ये जीव के सर्व अधिक से अधिक संकलित चल रहे हैं।
क्या यही जीव वापस अंतर्भूत में पातगुणी स्थान प्राप्त करेगा? नहीं,
वो करेगा ना ये तीव्र संकलेश वाला तो दो कर्म से करेगा।
हाँ।
भले अंतर्मूर्त कम से कम
तो ज्यादा टाइम लेगा
कहाँ पर
हाँ,
क्योंकि अभी उसके दो करण हो गए ना वैसे अतिशीघ्र वाला बिना करण का भी आता है और ये तीव्र संकलेश से जा रहा है तो उसके योग्य यथा योग्य विशुद्धि होगी। दो करण हो गए और फिर वो सहमत है, ये बात पहले आई थी। हाँ अंतर्मूल उसके लिए भी अंतर्मूल हाँ, परंतु उसमें तकलीफ की बात नहीं है। अति संकलेश से जा रहा है कि थोड़ी संकलेश से जा रहा है उसमें उन्होंने दो डिफरेंस किए थे। बहिरंग कोई तीव्र कारण कोई बाहर में लिया था उन्होंने
बहिरंग कारण बताया
तीव्र संकलेश वाला। अभी हम तो इतना ही ले लेंगे, बहिरंग कारण की बात छोड़ दो। अत्यंत तीव्र संकलेश से गया है तो थोड़ी मंदता हो जाएगी फिर दोबारा लौटते हैं वहाँ तो करण करके फिर आएगा और ऐसे ही वो गया है तो बिना करण के भी इमीडिएटली वो एक लघु अंतर्मूर्त में आता है। इसका अंतर्मूर्त थोड़ा बड़ा होगा। अप्पा बहुम अब अल्प बहुत्व का अधिकार है। यह सूत्र सुगम है। तम जहां वह जैसे यह पृष्ठा वाक्य भी सुगम है। जहन्या संयमा संयम लब्धित होवा जघन्य संयमा संयम लब्धि सबसे स्तोक है। यानी यहाँ की विशुद्धि सबसे कम है क्योंकि मिथ्यात्व में गिरने के सन्मुख हुए संयता संयत के अंतिम समय में तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलित ये शब्द डाला है। नहीं तो सबके मिथ्यात्व में जाने वाले सबके इतनी होती ऐसा नहीं है, उसके कारण यह जघन्य पने को प्राप्त हुई है। उपकसिया संज ऐसा नहीं है, वो संजमा संयम में कितने काल रहता है उससे कोई संकलेश से कुछ लेना देना नहीं है। जब वो मिथ्यात्व के सन्मुख हुआ है अभी ऐसे तीव्र उसके कषाय हो रहे उस समय कि वो मिथ्यात्व अनंतान मंदिर का उदय अभी होगा नेक्स्ट समय में और वो मिथ्यात्व में जाएगा, परंतु मिथ्यात्व में जाने के योग्य जो परिणाम है उसकी भी रेंज है, वो भी रेंज है। तो कोई इतने परिणाम से जा रहा है इतनी विशुद्धि से, कोई इतनी कम विशुद्धि से, नहीं संकलेश ज़्यादा है उसका उसके साथ जा रहा है तो ये जघन्य विशुद्धि है तो इसलिए उसके तक प्रायोग्य लिख दिया।
क्योंकि पांचवें से पहले जो संघ में जाएगा उसकी मान्यता में कुछ दोष आ जाएगा।
बिल्कुल, तभी तो पहले में गए उसका अर्थ क्या है, मान्यता में दोष हो गया उसका। मिथ्यात्व का उदय होगा कि नहीं होगा, क्या अकेले अनंतानुबंधी का होगा?
नहीं नहीं,
हाँ अभी तो संकलेश हो गए, अभी ऐसे संकलेश हाँ यानी वो संकलेश की तरफ वो ऐसे जा रहा है कि अभी वो नेक्स्ट समय में नियम से मिथ्यात्व नहीं जाएगा क्योंकि जाने के पहले उसके संकलेश 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 शुरू हो गए। एक समय का कार्य नहीं हुआ है ना, कुछ लगातार उसके संकलेश बढ़ते 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 फिर वो वहाँ से गिर गए।
पांचवें गुणस्थान में कभी तक मान्यता में दोष नहीं है पर जब भी
दोष नहीं तो हम उसको पांचवा गुणस्थान कैसे कहेंगे?
ऊपर से गिरा तभी गिरा,
ये ऑलरेडी गिर गया बाद में तो उसको हम टॉप वाला नहीं कहेंगे ना पर्वत के ऊपर है करके खोटे ने उसके संकलेश वाले परिणाम हो रहे हैं। खोटे ने मान्यता में तभी भी उसके कोई बदलाव नहीं था, बाद में हो गया। हाँ बिल्कुल
नहीं
पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो वो तो उसके उस सम्मुख उसके हो रहे हैं अभी मान्यता में भी व्यक्त रूप से, तभी हम मिथ्या तो कहेंगे।
इसीलिए मैंने पूछा ना कि ये कसाई से तो नहीं होगा पहले गुणस्तर में गए, हाँ वही मेरा क्वेश्चन था। तभी मान्यता में जो कभी दोष हुआ उसी समय वो पहले गुणस्तर में।
हाँ क्योंकि ये जो बातें हैं समय समय की वो तो केवल ही गम्य है, हम तो उसको आगम से ही निर्णय कर सकते हैं। बाह्य में उसने क्या ऐसा किया कि उसकी मान्यता में दोष, वो तो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा उसके। जो तत्काल अतिशीघ्र विदाकरण के भी जो कोई करेगा या दो करण मानकर भी करेगा छोटे में अंतर्मूर्त में यथाव्य अंतर्मूर्त में, तो उसमें कैसा अभी क्या वो तो जाके खुदेवों की तरह भजना शुरू करेगा, क्या करेगा? कोई तो ऐसे घर में बैठा है ना अभी उस पांचवा का है वो तो नीचे आ गया फिर दोबारा वो चढ़ गया। ये तो आगम से हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, हम उसको बाह्य लक्षण ढूंढने चले जाते हैं ऐसा नहीं करना, परंतु मिथ्या तो जरूर वहाँ उदय शुरू हुआ है और उसका वहाँ मान्यता में दोष आ चुका है तभी तो उसको मिथ्या दृष्टि कहेंगे। देखो ये उपकस्या संयमा संयम लब्धि अनंत गुणा
उस परिणाम से है कि अनंत गुण का उदय आएगा अभी पांचवें गुण में है।
पांचवें गुण
अभी उसके प्रत्याख्यान
अभी तो प्रत्याख्यान का उदय है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान अनुदय रूप से बैठी है, अनुदय एक समय ऊपर स्थित है अभी वो प्रत्याख्यान रूप से उदय में आ रही है, नेक्स्ट समय में अपने स्वयं के रूप से उदय में आएगी।
उसी समय मिथ्या तो भी उदय में
उसी समय मिथ्या तो उदय क्योंकि अभी वो वेद समय दृष्टि है, मिथ्या तो भी एक समय ऊपर पड़ा है, मिथ्या तो समय मिथ्या तो रूप से होकर उदय में आता था वो अपने रूप से उदय में आएगा। हाँ तो ठीक है उदय भी होगा बंद भी होगा, मिथ्या तो भी है अनंतानुबंधी उदय भी है बंद भी है सब कुछ चालू है दोनों उसी समय क्योंकि सप्ताह में पड़ा है ना सारा, ऐसा नहीं कि वो बंद करेगा बाद में उदय में आएगा वो तो बात नहीं है, वहाँ रेडी बैठे हैं सारे
तैयार होकर बैठे हैं।
आप परिणाम पलटो वो तैयार उससे उत्कृष्ट संयमा से हम लब्धि अनंत गुणी यानी विशुद्धि ज्यादा है अनंत गुणा है, कितने गुणा है तो अनंत गुण। संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध संयता संयत के अंतिम समय में जो उत्कृष्ट विशुद्धि होती है ये यहाँ बात आई ना विशुद्धि की उसी को यहाँ लब्धि कहा था, उसमें उत्कृष्ट पना पाया जाता है। परंतु गुणकार अनंत गुणा है क्योंकि पूर्व के जघन्य लब्धि स्थान से जघन्य लब्धि स्थान में जो विशुद्धि थी उससे असंख्यात लोक प्रमाण छह स्थानों को उल्लंघन कर, ये छह स्थान क्या होते हैं नितिन भाई? आपको मालूम है छह स्थान षट स्थान होते हैं अनंत अनंत भाग वृद्धि क्योंकि वृद्धि के बात है ना। हाँ बहुत अच्छा। हाँ गुण 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 वृद्धि वृद्धि कहो। हाँ असंख्यात गुण वृद्धि अनंत गुण ऐसे एक बार हुआ दो बार हुआ तीन बार हुआ कितनी बार हुआ असंख्यात लोक बार वो छह का मिलकर एक बार वो भी केवल छह नहीं है उसमें तो सुचंगुल का असंख्या के भाग में एक मिलाओ और वो पांच बार लिखो आपस में गुणा करो इतने तो उसमें स्थान होते हैं ऐसे एक षटस्थान दो
असंख्यात
लोक प्रमाण जाने के बाद उत्कृष्ट का नंबर यानी असंख्यात लोग बार अनंत गुणा गुणा होते होते ये उत्कृष्ट तक आ गया है तो उसको डायरेक्ट हम अनंत गुणा कह देंगे। इस प्रकार सर्वप्रथम जघन्य और उत्कृष्ट संयमा संयम लब्धियों का स्वामित्व और अल्पभूत्व द्वारा निर्णय करके अब असंख्यात लोक प्रमाण अजघन्य अनुत्कृष्ट क्या कहा जो जघन्य भी नहीं वो अजघन्य और जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट मान लेते जघन्य का नंबर 5 देंगे और उत्कृष्ट का नंबर 100 देंगे, तो अजघन्य अनुत्कृष्ट किसको कहेंगे? छठे से लेकर 99 तक। पांचवा हमने जघन्य कहा था ना, तो पांचवा जघन्य था, उसके ऊपर एक एक बड़ा बड़ा था। तो कहते हैं असंख्य, वो असंख्यात लोक प्रमाण है। अजघन्य अनुत्कृष्ट संयमा संयम संबंधी विकल्पों का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध का आरंभ करते हैं। यानी विकल्प है भेद, बीच में ये विकल्प है रागात्मक विकल्प की बात नहीं है, भेद अलग अलग वेरिएशन। एतो संजदा संजदस्त लब्धि थानानि वत्त इस्तामो, इन सबको मिलकर क्या कहेंगे? संयमा संयम के लब्धि स्थान, स्थान है वेरिएशन, उसमें एक जघन्य है,
दो
एक उत्कृष्ट है और बाकी क्या सारे मध्यम है, जिसको यहाँ अनुत्कृष्ट अजघन्य अनुत्कृष्ट का। पहले जघन्य और उत्कृष्ट लब्धियों का ही स्वामित्व और अल्पभूत द्वारा निर्णय किया, ये बताया जघन्य किसके होता है, उत्कृष्ट किसके होता है। दूसरी बात बताई जघन्य थोड़ा है सबसे, उत्कृष्ट उससे अनंत गुणा है, और इन बिटवीन असंख्यात लोग बार सत्संग होते हैं। अब इससे आगे असंख्यात लोक प्रमाण भेदों से अनेक प्रकार के अजगण्य अनुत्कृष्ट संयमा संयम लब्धि संबंधी विकल्पों का जघन्य और उत्कृष्ट लब्धि स्थानों के साथ कथन करेंगे। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है, साथ यानी उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल लब्धि स्थान कहेंगे तो उसमें ये दो भी इंक्लूडेड हो गए। जैसे हमने आपको बताया था 5 ये जघन्य और 100 ये उत्कृष्ट है, तो टोटल लब्धि स्थान कितने हुए भाई? हाँ 5 से लेकर 100 तक कितने होंगे?
96।
5 को भी इंक्लूड करो और 100 को, उनमें डिफरेंस कितना है? 95। वे लब्धि स्थान 3 प्रकार के, अब इसकी चर्चा चले। ये जो सभी जो है वो 3 प्रकार के हैं। प्रतिपात स्थान, प्रतिपद्यमान स्थान और अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान। क्या 3 नाम बताए तेजल? हाँ हाँ, अप्रतिपात। देखो देखो हमारी भाषा में एक है प्रतिपाद पात, एक है अप्रतिपात, और दूसरा दोनों ही नहीं, यानी अनुभव कहो, कहीं कहीं उसको अनुभव स्थान भी कह दिया है, लब्धि स्थान में तो उसको अनुभव स्थान ही करके पुकारा है। हर बार अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान ऐसा लंबा नाम नहीं लेंगे, अनुभव अनुभव दोनों ही नहीं है, वो अनुभव। हाँ उनमें से जिस स्थान के होने पर यह जीव मिथ्यात्व को या असंयम को प्राप्त होता है वह प्रतिपात स्थान कहलाता। क्या है ये गुणस्थान? 5वां ही है, परंतु इसकी विशुद्धि के स्थान ऐसे अलग अलग है कि इतने अलग अलग स्थानों में से प्रतिपात यानी गिरना, गिरने के सन्मुख हुआ है, उसकी इतनी रेंज है गिरने वालों की, तो उसको कहेंगे प्रतिपात स्थान। यानी यहाँ से या तो चौथे में जाने वाले जीव है या पहले में जाने वाले। जिस स्थान के होने पर यह जीव संयमा संयम को प्राप्त होता है वह प्रतिपद्यमान स्थान कहलाता है। यानी जो 5वें में एंटर हुआ है उसको क्या कहेंगे? प्रतिपद्यमान स्थान। हमने देखा ना उसमें आने पर एकांत वृद्धि होती चली जाती है, उसमें भी कोई थोड़ी विशुद्धि से आएगा 5वें में, कोई अधिक विशुद्धि से आएगा, तो ये सारे स्थान क्या है? प्रतिपद्यमान स्थान सहमा सहम को प्राप्त होता है। जिस स्थान के होने पर उसको कहेंगे प्रतिपद्यमान स्थान। तथा स्वस्थान में अवस्थान के योग्य, यानी जो इन बिटवीन स्थान है जो 5वें में रह रहे हैं, एक तो 5वें में जस्ट आए हैं वो प्रतिपद्यमान स्थान, 5वें में से नीचे जाने वाले के प्रतिपात स्थान, और जो स्वस्थान में रहता है पांचवें में ही बना रहता है, तो उस अवस्थान के योग्य। और दूसरी बात क्या, उपरिम गुणस्थान के अभिमुख हुए शेष संयमा संयम लब्धि स्थान, यानी अन्य कौन से, एक है गिरने वाले के वो प्रतिपाद स्थान, एक नीचे से ऊपर आने वाले के वो प्रतिपद्यमान स्थान, और दूसरे हैं या तो पांचवें में ही लगा रहे या संयम के अभिमुख हुए, उनको अनुभय कहेंगे। उसी का नाम है वो प्रतिपात और प्रतिपद्यमान, ना गिरने वाले हैं ना अभी आए हुए हैं।
ये अनुभय स्थान में उनको अधप्रवृत्त और अपूर्वप्रवृत्त ऊपर के
वो सब संयम के अभिमुख वाले उसमें लेना।
नहीं,
सातवें में जाने वाला जब दो करण मांडेगा उस अपूर्व करण की बात पूछ रहे हैं, वो गुणस्थान उसका पांचवा ही है। यहाँ पर प्रतिपात स्थान सबसे थोड़े हैं, ये विशुद्धि की बात नहीं है, ये नंबर ऑफ स्थानों की बात है। गिरने के सन्मुख वाले कितने स्थान हो गए तो उसको कहें सबसे थोड़े, उनसे प्रतिपद्यमान स्थान असंख्यात गुण है, और उनसे अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान असंख्यात गुणे हैं। इन सभी को ग्रहण कर संयता संयत संबंधी लब्धि स्थान होते हैं। इसमें सब आ गए जगन्य उत्कृष्ट, उनका कथन करने के लिए यहाँ पर तीन अनुयोग द्वार हैं, यानी इसमें भी तीन अलग अलग पद्धति से एंगल से उसका निरूपण होगा। तो कहते प्ररूपणा, यानी है ये बताना, वो प्ररूपणा होगी, उनका प्रमाण और अल्प बहुत है, कौन से कितने ज़्यादा है क्या है उसकी बात करते हैं। उनमें से तीनों ही लब्धि स्थानों संबंधी जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट लब्धि स्थान तक, तीनों ही लब्धि स्थानों संबंधी ने प्रतिपाद स्थानों में भी जघन्य होगा उत्कृष्ट होगा, वो सबसे थोड़े बताए हैं, फिर भी उसमें भी जघन्य से उत्कृष्ट तक पृथक पृथक, यानी अपने अपने षट्स्थान पतित छह वृद्धि क्रम से स्वरूप का निर्देश करना प्ररूपणा है, यानी उसमें भी इतने हो गए है सबसे कम, फिर भी उसमें वो तो षट्स्थान वृद्धि वाले बहुत सारे स्थान पाए गए। उसे यहाँ सर्वप्रथम जानना चाहिए, क्योंकि प्रमाण और अल्प बहुत्व की प्ररूपणा वह योनि है, ख्याल में आता ना, योनि है उसकी उत्पन्न करता है, यानी पहले हम है बताएंगे तब फिर उसका स्वामी कौन है या उसके प्रमाण क्या है, स्वामी की बात नहीं है, उनका प्रमाण क्या है और उसमें क्या अल्प बहुत्व है ये बताते हैं। तम जहा वे जैसे लब्धि स्थानों की प्ररूपणा को विषय करने वाला यह पुच्छा वाक्य सुगम है। अब यहाँ उसका स्वरूप बताएंगे। जहन्नयम लब्धि स्थानम अनंतानि फद्दयानि, जघन्य लब्धि स्थान अनंत स्पर्धक स्वरूप है। नितिन भाई मेरा प्रश्न है आपसे, ये जघन्य लब्धि स्थान प्रतिपात है, प्रतिपद्यमान है कि अनुभय है? प्रतिपात, क्यों? तीनों में जघन्य हो गए, परंतु यहाँ क्या लिख रहे हैं, जघन्य लब्धि स्थान सभी लब्धि स्थानों में जो जघन्य है वो कौन सा होगा, जो हमने पहले देखा था, ये जघन्य है, ये उत्कृष्ट है, वो मिथ्यात्व के सन्मुख वाला हमने देखा था, तो वो क्या कहेंगे, वो प्रतिपात स्थान है। ऐसे तो उन्होंने बताया ये प्रतिपात के भेद, ये प्रतिपद्यमान के भेद और ये अमुक अमुक भेद, उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट लगा रहे। यहाँ कहते हैं जघन्य लब्धि स्थान जघन्यम लब्धि स्थानम अनंतानि फद्दयानि, उसका अर्थ है जघन्य लब्धि स्थान अनंत स्पर्धक स्वरूप है, यानी उसके जो विशुद्धि है वहाँ की, उसके अविभाग प्रतिच्छेद उसको हम कहेंगे, तो अनुभाग जो नापा जाता है, अविभाग प्रतिच्छेद जो नापे जाते हैं, तो उसमें वो वर्ग वर्गणा स्पर्धक आदि रूप से नापे जाते हैं, इसलिए कहा अनंत स्पर्धक स्वरूप है। इस सूत्र द्वारा असंख्यात लोक प्रमाण संयमा संयम लब्धि स्थानों संबंधी जो जघन्य लब्धि स्थान है उसके स्वरूप का निर्देश किया गया ऐसा जानना है ना। ये मिथ्यात्व के सन्मुख वाला जघन्य उसको लिया यहाँ पर शंका वह कैसे समाधान। यह जघन्य स्थान सब जीवों से अनंत गुणे अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों से निष्पन्न हुआ है जघन्य परंतु उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं हम कहेंगे अनंत है। कौन से वाला अनंत है तो जीव राशि वाला जो अनंत है उससे अनंत गुणा वाला अनंत है। यहाँ क्या क्या जीवों से अनंत गुणे अनंत अनंत गुणे वाला अनंत इतने अविभाग प्रतिच्छेदों से ये उत्पन्न हुआ है निष्पन्न हुआ है। ये ही अनंत अविभाग प्रतिच्छेद अनंत स्पर्धक कहे जाते हैं। ओ क्या कहा ये जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है उन्हीं को अनंत स्पर्धक कहा
क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर स्पर्धक शब्द अविभाग प्रतिच्छेद का वाची स्वीकार किया गया। देखो जब कहीं हम वर्ग भी कहते हैं तो उसके अविभाग प्रतिच्छेदी समझते हैं। वर्गणाओं में भी एक एक से बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेदी कहते हैं और जब स्पर्धक कहेंगे तो वहाँ का जो मैक्सिमम अविभाग प्रतिच्छेद है उसी को स्पर्धक नाम दे देंगे।
मैंने क्वेश्चन जो पूछा है क्या कहते हैं ये तो अप्रशस्त कर रहे हैं
अप्रशस्त
क्योंकि ये क्या कहते हैं प्रत्याख्यान की बात है कि विशुद्धि की बात है तो विशुद्धि ये तो ये तो अप्रशस्त की बात है ना तो यहाँ पे अनंत गुणा
विशुद्धि की बात है लब्धि स्थान की बात चल रही है विशुद्धि बढ़ रही है कि नहीं ऊपर
अच्छा विशुद्धि स्थान की बात है
संयमा संयम लब्धि स्थान का अर्थ क्या है विशुद्धि के स्थान कषायों के उदय स्थान नहीं है यहाँ कषायों के उदय स्थान नहीं कह रहे हैं कषायों के उदय स्थानों की बात करने तो वो तो घटेंगे ये विशुद्धि की बात है संयमा संयम लब्धि कहा है तो जीव में क्या होगा विशुद्धि बढ़ रही है हाँ उसकी भी रेंज है हाँ बिल्कुल है उस रेंज को भी प्रतिपाद स्थान कहेंगे ना हम अकेला एक जघन्य एक ही है जघन्य एक ही है जघन्य की रेंज नहीं है पर प्रतिपाद स्थानों की रेंज है उसमें जघन्य उत्कृष्ट बनेंगे जघन्य हमेशा एक ही होगा उसकी रेंज नहीं होगी जघन्य एक ही है उसको प्रतिपाद स्थान कहेंगे प्रतिपात स्थान पे आपका क्या प्रश्न है वो बढ़ती नहीं है वहाँ है यहाँ क्या लिखा है उसमें भी कितने हैं विशुद्धि तो अनंत है ऊपर कहेंगे उससे भी अनंत गुना मिनिमम वाले की भी यहाँ तो सबसे मिनिमम पॉसिबल जो जघन्य है वो प्रतिपात का भी जघन्य है और सबका भी जघन्य है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने तो अनंत है। अब उस अनंत को हमने बेस बनाया मिनिमम पॉसिबल अब आगे के स्थान उससे कितने ज्यादा है उसकी बात करेंगे। अभी तो जघन्य में कितने हैं तो अनंत है इस अनंत से आगे आगे कितना बढ़ेगा वो तो बताएंगे। अभी अनंत है ना पहले अनंत सिद्ध किया अब कहेंगे अनंत वा भाग अधिक है मूल में अनंत नहीं होगे तो अनंत वा भाग कैसे होगा। अभी हम शाम को योग पढ़ रहे हैं मूल में उसको असंख्याति ले लिया अविभाग प्रतिच्छेद तो उसमें असंख्याति बन सकता है असंख्यात वा भाग को असंख्यात गुना को यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद बेसिक मिनिमम पॉसिबल कितने तो अनंत है आगे के स्थानों में कितना बढ़ेगा वो बताएंगे। तो यहाँ कहते स्पर्धक से क्या समझना यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद इसलिए चौथी लाइन समाधान की इस प्रकार से इस प्रकार के अविभाग प्रतिच्छेद स्वरूप अनंत स्पर्धकों को ग्रहण कर यह जघन्य लब्धि स्थान होता है ग्रहण करे नहीं वो कई बार से नहीं ग्रहण करता है हमें समझने के लिए जघन्य लब्धि स्थान में कितने विशुद्धि के अविभाग प्रतिच्छेद है तो हम कहेंगे अनंत है। नहीं नहीं, जीव यानी जीव राशि कौन से की? वो सब में से सब जगन्य, अभी टोटल लब्धि स्थान लिए हैं उसके जगन्य की बात चल रही है। यहाँ वो प्रतिपाद प्रतिपद्यमान की अभी बात उठाई नहीं उन्होंने। जो जगन्य सबका जगन्य वो प्रतिपाद का भी जगन्य ही है, प्रतिपद्यमान की वो मिडल वाला है उसकी बात अभी नहीं ले रहे। ये प्रतिपाद का भी जगन्य है और टोटल का भी जगन्य है, क्योंकि प्रतिपाद स्थान सबसे नीचे लिखेंगे हम जगन्य की ओर,
तो ये सबके लिए जगन्य है।
हाँ, सबके लिए भी जगन्य और प्रतिपाद का भी जगन्य। अब उसमें क्या बता रहे हैं कि अनंत स्पर्ध का एक अर्थ होता है अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, यहाँ तक बात समझ में ही? और यहाँ जो जीवों से अनंत गुणा वाला वो अनंत का प्रमाण बताना था, जीव राशि जो अनंत है, हम देखें ना जीव अनंत पुजगल अनंत अनंत, वो जो जीव राशि वाला अनंत है उससे अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद ये जघन्य लब्धि स्थान में है विशुद्धि के अविभाग। अब पांचवी लाइन में, अथवा यह जघन्य लब्धि स्थान मिथ्यात्व में गिरने के सन्मुख हुए संहिता संयत के अंतिम समय में कषायों के अनंत अनुभाग स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार कार्य में कारण के उपचार से अनंत स्पर्धक ऐसा कहा गया है, अन्यथा उसके स्वरूप के निरूपण का दूसरा उपाय नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो कषायों के जो उदय हो रहा है, कषायों के यानी कषाय कर्मों का, तो उसमें भी अनुभाग कर्मों में पाए जाते हैं, तो कर्मों का किस अनुभाग रूप से उदय हो रहा है उसकी बात यहाँ बताएं। तो कहते हैं उसके अनंत स्तर पर कर्मों के उसका उदय हो रहा है, ये बात कहना है। विशेषार्थ, जितने भी सीमा सेम लब्धि स्थान है वे सब तीन प्रकार के हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मात्र सीमा सेम लब्धि से गिरते समय ही होते हैं, मात्र लगाएं केवल, यानी जो यदि कोई पांचवे में आता है पांचवा बना रहता है तब तक तो उसके प्रतिपाद स्थान में से एक भी स्थान नहीं होगा। इनकी प्रतिपाद सीमा सेम लब्धि स्थान संज्ञा है। कुछ स्थान ऐसे हैं जो सीमा सेम को प्राप्त करते समय प्राप्त होते हैं, इनकी प्रतिपद्यमान सीमा सेम लब्धि स्थान संज्ञा है, और बहुत कुछ ऐसे हैं जो या तो सीमा सेम के अवस्थिति के काल में होते हैं या सीमा संयम से अप्रमत्त संयत भाव को प्राप्त होने वाले के होते हैं, जिसको हमने स्वस्थान सीमा संयम कहा, या संयम को प्राप्त होने के सन्मुख वाला जो। इनकी अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान सीमा संयम लब्धि स्थान संज्ञा है, हमने उसको अनुभव कह दिया है ना। जैसे ये अनुभव मेरा शब्द नहीं है, लब्धि चाल में वगैरह आता है। इन्हीं तीन प्रकार के सीमा सेम लब्धि स्थानों के अल्प बहुत्व का निरूपण करते हुए यहाँ पर जो सबसे जघन्य सीमा सेम लब्धि स्थान है उसके स्वरूप का निरूपण किया है। शेष कथन स्पष्ट है, क्या निरूपण किया है कि उसमें सबसे कम परंतु फिर भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उसी को अनंत स्पर्धक होते कह दिया। यहाँ से तो अल्प बहुत्व शुरू हो गए, आगे के सूत्र में कहते हैं, अभी सूत्र नहीं आया ना। हाँ, इस प्रकार इस सबसे जघन्य लब्धि स्थान के स्वरूप का कथन कर अब इससे आगे छह प्रकार की वृद्धि से युक्त असंख्यात लोक प्रमाण शेष और जघन्य स्थानों के स्वरूप का निर्देश करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं, यानी इसके आगे क्या होगा, वृद्धि वृद्धि वाले अलग अलग स्थान पाए जाएंगे भले वो प्रतिपात वाले हैं फिर भी। तो कहते तदो विदीय लब्धि स्थानम अनंत भागुत्तरम, उससे दूसरा लब्धि स्थान अनंतवा भाग अधिक है, क्योंकि हमने छह प्रकार की वृद्धि में पहली वृद्धि अनंत भाग वृद्धि के लिए, यानी इसके जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है उसको दूसरे अनंत से भाग देंगे, जो प्रमाण आएगा वो उसी मूल राशि में मिला देंगे, तो अनंत भाग अधिक अनंत भाग अधिक अनंत भाग अधिक चलेगा। पिछले जघन्य लब्धि स्थान को सब जीव राशि प्रमाण भागार से भाजित कर, ये जघन्य लब्धि स्थान में कितने जीव राशि से अनंत गुणा उसमें है, उसको जीव राशि वाले अनंत का भाग दिया, वहां प्राप्त एक भाग को प्रतिराशिकृत उसी जघन्य लब्धि स्थान में, प्रतिराशि में जिस राशि में हमको मिलाना है, ओरिजिनल जो राशि है उसी में मिलाने पर उससे अनंतवा भाग अधिक होकर दूसरा लब्धि स्थान उत्पन्न होता है। नहीं मिला नहीं, ये ख्याल में आई बात, अनंत का भाग देकर जितना आया उतना उसे में मिला है, अथवा जघन्य लब्धि स्थान की उत्पत्ति का कारणभूत जो कषाय उदय स्थान है उससे दूसरे लब्धि स्थान की उत्पत्ति को कारणभूत कषाय उदय स्थान अनंत स्पर्धकों से हीन होता है। क्यों? कषाय तो कम हो गए तभी विशुद्धि बढ़ेगी ऊपर के स्थानों में, तो कषाय के जो अनुभाग उदय स्थान बताए हैं वो जघन्य सहमा सहम लब्धि में जो उसका प्रमाण था उसका अनंत वा भाग ऐसा भी कम होगा, अनंत उसको अनंत भाग हानि कहेंगे।
विशुद्धि का उत्कृष्ट स्थान ग्यारहवें गुण स्थान के पहले समय भी होगा कि चौदहवें?
यहाँ सहमा सहम की बात कर रही
हूँ, नहीं ऐसे में जनरल पूछता है,
यहाँ का विशेष कुछ आप दुनिया भर की सोचते हो।
हाँ नहीं, उसी अपेक्षा से मैंने पूछा कि ये विशुद्धि
तो ग्यारह गुण स्थान के स्टार्टिंग में होगी क्या लास्ट में होगी?
वहाँ पे तो समाधि हो जाएगा ना,
तो आपने प्रश्न का उत्तर बता दिया।
नहीं नहीं, मैं सोच रहा था चौदह गुण स्थान के अस्तित्व
ये विशुद्धि तो वहाँ वहाँ
परिपूर्ण विशुद्धि ग्यारहवें से हो जाती है।
क्योंकि कषाय का घटना ही विशुद्धि का बढ़ना है ना,
इसीलिए मैंने पहले पूछा था ये कषाय का मतलब उत्कृष्ट है। और
देखो अथवा कहकर क्या कहा कि जघन्य लब्धि, चौथी लाइन, जघन्य लब्धि स्थान की उत्पत्ति का कारणभूत जो कषाय उदय स्थान है उससे दूसरे लब्धि स्थान की उत्पत्ति का कारणभूत कषाय उदय स्थान अनंत स्पर्धकों से हीन होता है, यानी अनंतवा भागहीन, अनंत भाग हानि, विशुद्धि में अनंत भाग बुद्धि, कषाय में अनंत भाग हानि, यानी कषायों का घटना ही विशुद्धि का बढ़ना कहेंगे ना वहाँ पर, यहाँ तो ये वही बात है। और ये हीन स्पर्धक समस्त अनुभाग के अनंतवे भाग प्रमाण है, इसीलिए उसको अनंतवा भागहीन कहेंगे, क्योंकि जघन्य स्थान को समस्त जीव राशि से भाजित करने पर वहाँ वे हीन स्पर्धक एक खंड प्रमाण प्राप्त होते हैं, इन्हें अनंतवा भाग। इस प्रकार अनंत अनुभाग स्पर्धकों के हीन होने पर उससे उत्पन्न होने वाला दूसरा लब्धि स्थान भी जघन्य लब्धि स्थान से अनंत स्पर्धक अधिक होकर, यहाँ अनंतहीन होता है अनंत अधिक होता है उसका अर्थ क्या है? वहाँ तो कषायहीन होता है, कषायों का अनुभाग हीन होता है और विशुद्धि का अनुभाग बढ़ता है। तो कहते हैं कि दूसरा लब्धि स्थान क्या कहा? जघन्य लब्धि स्थान से अनंत स्पर्धक अधिक होकर उत्पन्न होता है, यानी उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है फिर भी पूर्व अनुभाग से अनंत व भाग ही अधिक, फिर भी होना अनंत विभाग में अनंत स्पर्धक है, ये बताना चाहते हैं। बढ़ा कितना अनंत वा भाग बढ़ा?
पर उसके भी अनंत,
फिर भी कितने स्पर्धक बढ़े कहेंगे तो अनंत बढ़े। महाकाल जीवराज, हाँ दोनों दोनों जगह, हाँ, क्योंकि हीन अनुभाग स्पर्धकों से उत्पन्न होने वाले कार्य की भी उपचार से उक्त संज्ञा के होने में विरोध का अभाव है। यानी वहाँ कर्मों के अनुभाग के उदय की बात थी और यहाँ जीव के विशुद्धि की बात। विशुद्धि एक कार्य है और कर्मों का उदय एक कारण है, तो कार्य में कारण का उपचार किया। तो कारण क्या, कषाय के उदय स्थान अनंत व भागहीन हो, यानी अनंत गुणाहीन हुआ, यानी अनंत व भाग शेष रहा। अनंत व भाग, क्योंकि अनंत भाग हानि हो गया है, बराबर।
और यहाँ पे विशुद्धि अनंत व भाग,
अनंत व भाग है क्योंकि षट स्थान हो रहे हैं ना अभी, पहले यानी सेकंड स्थान की बात चल रही है आगे। यह अर्थ आगे सर्वत्र लगा लेना चाहिए। इसलिए सिद्ध हुआ कि जघन्य लब्धि स्थान से दूसरा लब्धि स्थान अनंतर पूर्व कहे गए प्रतिभाग के अनुसार अनंतवा भाग अधिक है। मूल में जो राशि बताई थी उससे अनंतवा भाग अधिक है।
खाली इतना बताया, अनंतवा भाग में भी स्पर्धक अनंत है।
हाँ बिल्कुल, अनंत विभाग में भी अविभाग प्रतिच्छेद को या स्पर्धक को अनंत है। हाँ यहाँ पर विशेषार्थ, पहले जघन्य लब्धि स्थान को अनंत अविभाग प्रतिच्छेद स्वरूप बताए हैं। इन अविभाग प्रतिच्छेदों में सर्व जीव राशि प्रमाण अनंत का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना उस जघन्य लब्धि स्थान में जोड़ने पर दूसरा लब्धि स्थान प्राप्त होता है। इसका आशय यह है, सबसे जघन्य सीमा से लब्धि स्थान में जितनी विशुद्धि पाई जाती है उससे इस दूसरे लब्धि स्थान में उक्त प्रमाण में विशुद्धि विधिंगत हो जाती। उक्त प्रमाण ने अनंत व भाग अधिक, दूसरे शब्दों में इसी को यूं भी कहा जा सकता है कि सबसे जघन्य लब्धि स्थान में जितने स्पर्धकों से युक्त कषाय उदय स्थान पाया जाता है उनके अनंत वे भागहीन स्पर्धकों से युक्त कषाय उदय स्थान दूसरे लब्धि स्थान में होता है। क्योंकि जैसे जैसे संयमा से हम लब्धि स्थान की विशुद्धि में वृद्धि होती है वैसे वैसे कषाय उदय स्थान में स्पर्धकों की अपेक्षा हानि होती चली जाती। यहाँ यद्यपि जघन्य लब्धि स्थान से दूसरे लब्धि स्थान में अनुभाग स्पर्धकों की हानि हुई है, फिर भी इस दूसरे स्थान में प्रथम स्थान से जो लब्धि स्थान संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद अधिक पाए जाते हैं उनमें स्पर्धकों का आरोप करके उपचार से जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों से द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धक अनंतवे भाग अधिक कहे हैं। अविभाग प्रतिच्छेद को ही यहाँ अनंत कह दिया, अनंत अनंत वा भाग अधिक है ना, अनंत भाग अधिक, अनंत भाग वृद्धि हो रही है। ये तो उन्होंने एक स्थान बताया सेकंड वाला। आगे कहते एवं छठान पदिद दल पदिद लब्धि स्थाना, इस प्रकार षट स्थान पतित लब्धि स्थान होते हैं। इस प्रकार इस क्रम से षट स्थान पतित लब्धि स्थानों का कथन करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यथा जघन्य लब्धि स्थान से अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण अनंत भाग बुद्धि कांडक जाकर असंख्यात भाग बुद्धि स्थान होता है। ये क्या कहना चाहते हैं, ये जघन्य लब्धि स्थान को हम ज कहेंगे, उसके नेक्स्ट स्थान कौन सा है, अनंत भाग अधिक, अनंत भाग बुद्धि, तीसरा स्थान वो भी अनंत भाग अधिक, चौथा वो भी अनंत भाग अधिक। जैसे अनंतवा भाग अधिक, अनंतवा भाग अधिक, अनंतवा भाग अधिक कितनी बार होगा, तो यहाँ कहा जाएगा अंगुल कहो या सूक्ष्मंगुल कहो एक ही बार, अंगुल के असंख्यातवे भाग बार ऐसा हुआ, संख्यात्व का संख्या होना चाहिए, ऊपर क्या लिखा है? अंगुलस्थ संख्या यदि भाग में एकदम गंतु न असंख्य भाग वड्डी स्थान मूल तदो असंख्य भाग वड्डी कंडे गंतु न संख्य भाग वड्डी। नीचे क्या लिखा है? कंडे स्थान एक खंड कांडक का प्रमाण हमेशा वो मूल के असंख्या भाग होता है। यहाँ क्या लिखा है? मुझे पता है असंख्या भाग है मूल का असंख्या भाग।
असंख्या
पांच बार लिखते हैं आपस में गुणा करते हैं एक अधिक करके।
पर यहाँ पे क्या विशुद्ध की अपेक्षा स्थान कम हो जाएगी? नहीं, ये तो
बढ़ा गुना बड़ा बढ़ जाएगा। अभी तो ऐसे ही रखेंगे हम। ये संख्यात्वा लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के असंख्यात्वा। देखो जगन ने लब्धि स्थान से अंगुल के यहाँ लिखा है संख्यात्व भाग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि कांडक जाकर असंख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। तत्पश्चात असंख्यात भाग बुद्धि कांडक जाकर, अभी सब जगह कांडक लिख दिया। कांडक का अर्थ समझते हैं? इतने बार होना उसको कांडक है। जैसे अभी उसके लिए क्या कहते हैं, ये जो अनंत भाग बुद्धि है ना उसके लिए उ लिखते हैं उ। उसका दूसरा नाम है उर्वंक, लेटर उ। एक बार दो बार चार बार कितना सिस्टम उल्टी असंख्या देगा, तो उसके लिए दो बार लिखेंगे तो उसका अर्थ होगा सिस्टम उल्टी असंख्या एक कांडक बार, फिर जाके एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग संख्यात नहीं असंख्यात, उसके लिए क्या कहेंगे? चार
चार चार चार
एक बार हुआ ना, फिर अनंत भाग वृद्धि कर देगा
वो भी अंगुल की असंख्या
वो तो असंख्यात बार हो जाएगी
तो चार
जाके फिर दूसरी बार असंख्यात भाग होगी। तो ये दो बार लिखा उसका अर्थ एक कांडक बार, वैसे ये भी दो बार हुआ उसका अर्थ क्या है? कांडक बार। यानी केवल दो बार नहीं लिखना, कांडक बार ऐसा होते रहे ऊ चार ऊ चार ऊ चार ऊ चार, तो दो बार लिखना तो कांडक हो गया। फिर जाके फिर ऊ तो होगा ही बीच में, फिर जाके एक बार पांच होगा यानी संख्या भाग वृद्धि वाले, तो ये कहते उसको कहेंगे कांडक बार। देखो इसको पढ़ेंगे, जगन्य लब्धि स्थान से अंगुल के यहाँ संख्यात्व लिखा है संख्यात्व भाग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि कांडक जाकर असंख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। तत्पश्चात यानी इसी ऑर्डर से बीच बीच में अनंत भाग वृद्धि होते हुए असंख्यात भाग वृद्धि कांडक जाकर संख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। तत्पश्चात यानी इसी ऑर्डर से जब एक बार हुई संख्यात भाग वृद्धि, दो बार हुई तो संख्यात भाग वृद्धि कांडक जाकर संख्यात गुण वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। तो संख्यात गुण वृद्धि भी कांडक बार हो जाएगी, फिर असंख्यात गुण वृद्धि होगी वो भी कांडक बार हो जाएगी, तो एक बार अनंत गुण वृद्धि होगी, अनंत गुणा वृद्धि एक बार, तो ये पूरा झमेला होगा तो एक बार अनंत गुणा वृद्धि इत्यादि रूप से प्रथम अनंत गुण वृद्धि स्थान उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए, तब कषाय उदय स्थान अनंत गुणाहीन होता है। जब विशुद्धि में अनंत गुणा तक वृद्धि हुई एक बार यानी एक स्थान हुआ तो कषाय में एक स्थान से हीन हो गए, क्योंकि अनंत गुणहीन कषाय उदय स्थान के बिना अनंत गुण स्वरूप संयमासयम लब्धि स्थान की उत्पत्ति नहीं होती। विशुद्धि की अनंत गुणा वृद्धि है तो वहाँ कषाय का उदय स्थान अनंत गुणाहीन है ही। यह एक षट स्थान, एक षट स्थान में इतनी बार ये सारे बीच में हो जाएगी प्रोसेस। इस प्रकार कितने षट स्थान हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान क्या है? प्रतिपात स्थान, और उसको सबसे थोड़ा बना विशुद्धि के इतने अलग अलग वेरिएशन होते हैं किसी भी गुण स्थान में। हम तो कह रहे हैं ये चौथे वाला है पांचवी वाला, ये कितना स्थूल कथन है, ये ख्याल में आता है। अरे गिरने वाले के इतने हैं, उसमें आने वाले प्रतिपद्यमान इससे असंख्यात गुण है, और स्वस्थान वाले और चढ़ने वाले उससे भी असंख्यात गुण है। तो टोटल स्थान कितने हो गए, तो हम कितना बाहर से उसको नाप निकालने जाते हैं तो वो कितना स्थूल है, और बाह्य क्रिया से तो नाप निकलता नहीं है। प्रतिपात स्थानों से संबद्ध यानी उसके रिलेटेड लब्धि स्थानों का उल्लंघन कर असंख्यात लोक प्रमाण षट्स्थान पतित प्रतिपद्यमान स्थान है, जो कि पिछले स्थानों से असंख्यात गुणे स्थान स्वरूप है, उनसे भी असंख्यात गुणे अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थानों के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण षट्स्थान पतित स्थान जानने चाहिए। ये षट्स्थान पतित स्थान भी असंख्यात जो तदनंतर समय में संयम को ग्रहण करने वाले जीव के सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध स्थान को अंत कर यानी उसमें भी यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है जो संयम को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें से एक कोई सबसे अधिक मैक्सिमम विशुद्धि वाला होगा, प्रकृत लब्धि स्थानों के समाप्त होने तक पाए जाते हैं। इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई, ये तो प्ररूपणा कर दी, जगन्य है ये इतने इतने इतने। अब इन्हीं के प्रमाण का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र आया है, असंख्येज्जा लोगा, जो असंख्यात लोक प्रमाण है प्रति। हाँ यहाँ तो कोई अंतर नहीं बताया है, बीच में होना चाहिए वैसे। प्रतिपात और प्रतिपद्यमान में भी कुछ बीच में गैप है कि नहीं है?
अच्छा योग से पंचेंद्रिय के अच्छा होते योग
है, अंतर है, अंतर भी असंख्य अपलोक प्रमाण है। 148 का पहला वाक्य आपने ये प्रश्न पूछा, देखो ये जगन्य से हम एक 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 स्थान बता रहे, इतने सारे प्रतिपात स्थान हो गए, अब प्रतिपद्यमान यानी जो नीचे के गुण स्थानों में से आया हुआ उसके उससे भी असंख्यात लोगों ने इतने स्थान है, तो क्या ये यहाँ का उत्कृष्ट प्रतिपात है और ये उसका जगन्य प्रतिपद्यमान है, तो इन दोनों में इमीडिएट नेक्स्ट स्थान होगा क्या, ये के बीच में कुछ गैप होगी? तो कहते यदि यहाँ स्थान होते विशुद्धि की अपेक्षा यहाँ अगर हम कम करें तो यहाँ भी असंख्यात लोक स्थान छोड़ देना तो फिर ये प्रतिपद्यमान स्थान पाए जाएंगे, ये बस होता है, यहाँ अंतर है। तभी तो कहें ये इसके स्थान, इसके स्थान, वो ऊपर के स्थान। आगे आएगा उस चर्चा। तो कहते जो असंख्यात लोक प्रमाण है प्रतिपात आदि के भेद से तीन प्रकार के ये सब षट्स्थान पतित संयमा से लब्धि स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, यह यहाँ सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। अब इस प्रकार कहे गए असंख्यात लोक प्रमाण संयमा से लब्धि स्थानों में प्रारंभ से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण लब्धि स्थान एकांत से प्रतिपात के योग्य ही है, यानी बस उसमें प्रतिपात के ही स्थान है अन्य कुछ नहीं। उन स्थानों में यह संयमा सेम को नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होते ना, वो है संयमा सेम में ही है, परंतु जो संयमा सेम प्राप्त होने के जो स्थान है ना शुरुआत के वो ज्यादा विशुद्धि वाले, ये तो अभी गिरने वाले हैं। इस प्रकार ज्ञान कराते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं, जहन्य लब्धि स्थाने संयमा संयमम न परिवज्यते, जघन्य लब्धि स्थान में यह जीव संयमा संयम को नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता है, जब पांचवें गुण स्थान में आया है तो उसके जघन्य लब्धि स्थान नहीं पाया जाएगा, वो तो गिरने वाले के पाए जाएंगे, इतनी जघन्य विशुद्धि। क्योंकि जो पहले से या चौथे से पांचवे में एंटर हुआ है उसकी विशुद्धि बहुत ज्यादा है, ये उसके जघन्य स्थान नहीं, ये बात बता रहे।
तो ये प्रतिपा स्थान में से कोई भी स्थान में से जीव से एम से उनको प्राप्त नहीं कर सकते,
नहीं होगा। क्योंकि मिथ्यात्व के अभिमुख हुए सर्वोत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले संयता संयत जीव के अंतिम समय में एकांत से प्रतिपात के योग्य लब्धि स्थान होता है। ख्याल में ये बात, ये जो पांचवें गुण स्थान से गिरने वाला है अंतिम समय में कौन सा होगा? प्रतिपात स्थान होगा उसका, क्योंकि अभी वो गिरने वाला है सन्मुख है, इसलिए इसका प्रतिपद्यमान लब्धि स्थान के साथ सर्वथा संबंध का अभाव है। प्राप्ति के स्थान प्रतिपद्यमान है और जो गिरने के सन्मुख है वो प्रतिपात स्थान है। जो प्रतिपात स्थान है वे प्रतिपद्यमान नहीं हो सकते, बात ख्याल में ही है। केवल इसी जघन्य लब्धि स्थान में यह जीव संयमाशयों को नहीं प्राप्त होता ऐसा नहीं है, यानी प्रतिपात में से सबसे जघन्य की पहले बात की, प्रतिपात में से जो सबसे जघन्य है वो संयमाशयम प्राप्ति के समय नहीं होता, ये बात बताई। तो क्या उस एक स्थान की बात है क्या सभी प्रतिपात स्थान की बात है? तो उसके उत्तर अभी बताएंगे। इतना ही नहीं परंतु इससे ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण लब्धि स्थानों में भी यह जीव संयमाशयों को नहीं प्राप्त होता, नहीं ही प्राप्त होता ही लगाए, क्योंकि प्रतिपात स्थान पने की अपेक्षा इसमें उनसे कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये सारे गिरने के सन्मुख वाले ही स्थान है। इन स्थानों में वो प्रतिपद्यमान स्थान पना नहीं होगा, मैंने प्राप्ति वाले स्थान इससे कुछ अलग ही है। इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं, ऐसे टाइम तो होगा परंतु अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा ये अलग अलग स्थान है, उसकी रेंज बताइए। मान लेते हैं हमने 5 से 100 तक स्थान टोटल देखे, ये प्रतिपाद स्थान कौन से 5 से 20 तक हो गए मान लेते, तो 5 वाला भी प्रतिपद्यमान नहीं है और 20 वाला भी प्रतिपद्यमान नहीं है, उसकी रेंज कुछ अलग। आगे से हम कहेंगे वो 30 से लेकर 50-60 तक कहेंगे, ख्याल में है बात।
तो ये स्थान को प्राप्त हुए कोई भी जीव नियम से गिरेगा?
हाँ, ये गिरने के ही स्थान,
नियम के गिरन,
नियम ये गिरने के ही है, प्राप्त होने के नहीं है, इतनी बात यहाँ बताए। बाकी चर्चा तो अभी हम करते हैं। जावानी के ज्ञान से तुझे लो पालो सोवानी मस्तक न हो सदा देख हो।
नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे तपस्वाणं।